शांति। आज संडे है, संडे माना ब्राह्मणों के लिए क्या होता है, नाश्ता भी हैवी होता है शरीर का तो मन का भी नहीं, व्यस्त को छुट्टी करनी है आज। तो आज जैसे कि अव्यक्त मुरली चली ना, तो उसी अव्यक्त मुरली की रिवीजन कराने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। आप पिछले 12 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और बाबा के हर बच्चे के अलौकिक जन्म की विधि भी अलग अलग होती है ना? सबसे अगर पूछेंगे आप कैसे आए ज्ञान में, तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी होगी। और डॉक्टर साहब ने कैसे जन्म लिया है, सीधा अव्यक्त मुरली सुनकर, डायमंड हॉल में पहली अव्यक्त मुरली सुनी और उनका अलौकिक जन्म हुआ आज से 12 वर्ष पहले। और इसीलिए उनको अव्यक्त मुरली की रिवीजन कराना बहुत अच्छा लगता है। पिछले कुछ महीनों से हमारे यहाँ जो रात्रि क्लास होती है वो हर संडे आप ही कराते हैं और वो उस दिन की अव्यक्त मुरली की रिवीजन ही होती है। और वो अव्यक्त मुरली की रिवीजन मतलब पूरी मुरली A to Z, एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा, लेकिन बावजूद उसके उसने उसके अनुभव भी बीच में होंगे। तो आप समझ सकते हैं आपको इस क्लास में कितना खजाना मिल सकता है। संडे के दिन बहुत खजाना लूटने का चांस होता है ना, क्योंकि बाकी सब कामों से छुट्टी। तो हमारे बीच में ऐसे बाबा के अनुभवी बच्चे, लाडले बच्चे आए हैं, 12 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में ही सेवाएं दे रहे हैं ऐसे फिजिशियन। और जहां तक मैं समझती हूँ हमारे ब्राह्मण परिवार के बीके भाई बहने यहाँ जो आते हैं, यहाँ जो रहते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाना है, ओ सचिन डॉक्टर के पास जाना, बहुत अच्छे डॉक्टर है। हाँ, तो बहुत दुआएं ऐसे भी कमा रहे हैं और क्लासेस करके भी कमा रहे हैं और साथ साथ परमात्मा की तो दुआएं है ही है, क्योंकि उनसे ही जन्म लिया, उनकी मुरलियों से प्यार है। तो ऐसे डॉक्टर से अब हम सुनेंगे आज की मुरली का रिवीजन।
ओम शांति। हर ब्राह्मण आत्मा एक बहुत ही अद्भुत तरीके से जन्म लेती है। हर एक की अपनी एक जीवन कहानी है। जो भी आत्मा है भगवान के पास आती है, वह आत्मा जरूर अपने साथ बहुत सारी विशेषताएं साथ लेकर आती है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम सबको किसने चुना है ना? आज की मुरली में कहां पर है, पार्टियों से मुलाकात में, तुम सबको किसने चुना? स्वयं भगवान ने चुना। इस संसार में असंख्य आत्माएं थी, परंतु उन असंख्य आत्माओं में से उसने हम श्रेष्ठ आत्माओं को चुना। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, क्या कहा आज बाबा ने, नशा होना चाहिए। क्या अनुभव करते हो कि अतीन्द्रिय सुख, अगर पूछना है तो केवल हमसे पूछो। क्यों? क्योंकि किसको पाया है हमने, उसको पाया है जिसे पाने के लिए भक्त आत्माएं तड़प रही है। हमने उसे पाया है जिसे पाने के लिए सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, और हमने उसे सहज पा लिया। जिसे कोई नहीं जानता संसार में, उसे हमने जान लिया। जिसे आज तक कोई पा ना सका, उसे हमने पा लिया। तो बाबा ने कहा ये पा लिया का गीत सदा बजता रहे, सदा हृदय गुनगुनाता रहे। तो जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने पाया इस संसार में, आज तक किसी ने नहीं पाया। हम श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव स्वयं किसने किया है? स्वयं परमात्मा ने किया है। अब मुझे ये बताओ कि हमें उसने क्यों चुना है? उसको हमारी मदद चाहिए, और क्यों चुना है उसने? इधर से भाइयों में से, उसने कुछ महान कार्य, उसके कुछ महान कार्यों के लिए और इसलिए चुना। उसके बच्चे तो सारी दुनिया है, डायरेक्ट बच्चे है, और कल तो पहले वाले है, और उसने हमें ही क्यों चुना? संसार में तो असंख्य आत्माएं थी, फिर हमें उसने क्यों चुना? हम सतयुग में जाने वाले हैं। और थोड़े नशे वाली पॉइंट्स बताओ जिसमें नशा हो। हाँ, शायद ऐसी कोई उसे कुछ विशेषता दिखी होगी जो संसार में और दूसरी आत्माओं में न थी, इसलिए उसने हमें चुना। किसने हमें चुना? हमने उसे चुना या उसने हमें चुना? क्यों हमने नहीं चुना? हम में हिम्मत ही नहीं थी, हम जानते नहीं थे। इधर नजदीक आ जाओ, पीछे सामने आ जाइए। सब नजदीक आ जाइए। बाइबल में एक वाक्य है जहां जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को कहता है, You have not chosen me, I have chosen you. I have picked you up from this world, for you do not belong to this world. तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो। मैंने तुम्हें चुना है, मेरे कार्य के लिए तुम्हें मैंने चुना है। हम तो कहां डूबे हुए थे? संसार में डूबे हुए थे, भक्ति में डूबे हुए थे। आज कहां ना तड़प रहे थे, जैसे संसार में जाल में, माया के जाल में तड़प रहे थे। तो उसने आकर हमारा चुनाव किया अपने महान कार्य के लिए। तो तुम्हें क्या अनुभव होना चाहिए? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख अर्थात हम पार्टियों से मुलाकात, आज की मुरली। अति इंद्रिय सुख अर्थात अति इंद्रिय सुख, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए। सुपर सेंशियस ब्लिस हैप्पीनेस, जिसमें इंद्रियों के जो रस है, शब्द स्पर्श रूप गंध, ये जो रस है, इनसे परे जो सुख प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। तो वह अतीन्द्रिय सुख हमें प्राप्त हुआ। बाबा ने आज पूछा है, ये अनुभव होता है या केवल सुना हुआ है? ज्ञान की क्या परिभाषा दी आज बाबा ने मुरली में? ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात स्वरूप में लाना, ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन। किसने कितना भी कुछ पढ़ा हो परंतु अगर अनुभव नहीं है तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान की क्या परिभाषा दी बाबा ने आज? स्वरूप में लाना, प्रैक्टिकल में लाना। आत्मा हूं इसका अनुभव, परमात्मा का अनुभव, चक्र का अनुभव, हर चीज का अनुभव, ज्ञान के एक एक शब्द का अनुभव, हर शक्ति का अनुभव, हर गुण का अनुभव, हर एक वाक्य का अनुभव, हर चीज का अनुभव, इसे कहा जाता है ज्ञान। क्योंकि हमारी ये है कैसी नई जीवन, नया जीवन, नया दिन, नई रात। ब्राह्मणों का सब कुछ क्या है? नया है। यहाँ पर विशेषता ही कौन सी है? नयापन, नवीनता, अनुभूति। और नवीनता ही कौन सी है? अनुभव। एक है, एक होता है सुनना, एक होता है सुनाना। कल का वरदान था ना, भाषण देने वाले तो बहुत है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? भाषणा देनी है। सेवाएं कौन सी करो? अभी साक्षात्कार करने की, कराने की सेवा करो। तो ब्राह्मणों का सब कुछ नया है, प्रश्न ये है हमारा क्या क्या नया है? सभी बताएंगे क्या क्या नया है हमारे इस जीवन में? कहां से आए आप लोग? सब दूसरे देश से यहाँ आ गए, अलौकिक जन्म है तो हमारा जन्म नया है, और क्या नया है बताइए? सब परिवार नया, आज की मुरली में बोला है बाबा ने, नया जन्म, नया परिवार और नया जीवन और नया दिन और नई रात और नया नई पढ़ाई और नया युग, नई दुनिया और नया, क्या नया है कि वही पुराना पुराना है? नया अनुभव और नया ज्ञान भी नया है, नए कर्म, विशेष कर्म, श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म, और क्या नया है? नया संसार, संसार ही बदल गया है। पहले हमारा संसार क्या था और अब हमारा संसार क्या है? अब ये नया संसार है। कौन सा संसार? ये परमात्मा प्रेम का संसार है, प्रभु परिवार है ये। और क्या नया है? ये युग ही नया है, सारा युग के युग नया है, और क्या नया है? कौन भगवान? नया भगवान? पहले कौन से थे? शुरुआत से अमृत वेले से चालू करो। हमारा हर अमृत वेला कैसा है? नया है। हर अनुभव कैसा है? नया है। भगवान से हमारे संबंध कैसे है? नए है। पहले जैसे संबंध नहीं है। आज मुरली में कहा ना, लौकिक बाप कौन सा वर्षा देता है? उलझन का। ये बाप कौन सा वर्षा देता है? खुशी का। अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा। हमारा सब कुछ नया है, हमारा चलना भी नया है, हमारा उठना भी नया, हमारा जागना भी नया। हमारी मुरली नहीं है कि पुरानी है? वही हर दिन की मुरली नहीं है, और हर दिन का वरदान नया, और हर दिन का महावाक्य नया, और हर दिन का प्रश्न नया, और हर दिन का स्लोगन नया, और हर दिन का ब्रह्मा भोजन भी कैसा है हमारा? हमारा ब्रह्मा भोजन भी नया, और हमारी सेवाएं नई सेवाएं है। कैसी सेवाएं हमारी? नई। उसमें क्या नया है? अब हम जो सेवा कर रहे हैं, और संसार की आत्मा भी तो सेवा करती है, वहां पर भी सोशल वर्कर्स है। हमारी सेवा और वो सेवा में क्या अंतर है? हमारी निष्काम भाव से सेवा है, और निष्काम भाव से सेवा करने वाले भी संसार में बहुत है, फिर भी हमारी सेवा और उनकी सेवा में क्या अंतर है? पतित को पावन बनाने की थोड़े नीचे का बताओ। और मनसा हमारी तन मन धन, मनसा वाचा कर्मना। आज की मुरली ने कहा है, मार्क्स किसके जमा होंगे? उनके जमा होंगे। उसमें एक पॉइंट है, तन मन धन जिन्होंने लगा लिया, मन वचन कर्म से जो सेवा करते हैं उनकी भी मार्क्स जमा होती है। तो हमारा कर्म नया है, हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म है, हमारा कर्म डायरेक्शन अनुसार है, हमारे कर्म श्रीमत अनुसार है, पवित्र कर्म। कैसे कर्म है? पवित्र कर्म। संसार के लोग जो है वो कमाते हैं, खत्म हो जाता है उनका। हमारा जमा का खाता कैसा है? लास्ट संडे की मुरली याद है ना, जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मना, सब में पवित्रता है। इसके लिए हमारे कर्म भी महान है, श्रेष्ठ है, श्रीमत अनुसार है, निस्वार्थ है, निष्काम है। हर एक कर्म कैसा है? संसार के कल्याण के लिए है। जो कुछ हम कर रहे हैं उससे स्वतः ही संसार का कल्याण हो रहा है। इसके लिए हमारे कर्म भी महान है और नए है। और क्या नया है हमारा? जीवन तो है ही, और उस जीवन में क्या नया है? हमारे संबंध, आपसी संबंध कैसे है? संसार के संबंध कैसे और हमारे संबंध कैसे? कल की मुरली में था ना, तुम हो भाई और बहन, ये प्रेम का नाता है। संसार में वैसा नाता नहीं है। संसार के संबंध विकारी है, संसार के संबंध दुख देने वाले हैं। जो भी संबंध उत्पन्न करो उसमें दुख ही मिलता है, क्योंकि वो दोनों ही संपन्न नहीं है। पर हमारे जो संबंध है अलौकिक है, उसमें दिव्यता है, उसमें महानता है। इसके लिए हमारे संबंध भी नए हैं। तो बाबा ने कहा, ज्ञान अर्थात भक्ति में अब तक तुमने जो किया वो यहाँ भी करना तो क्या बड़ी बात। इसके लिए हम अभी जो कर रहे हैं, हमारे इस ज्ञान की विशेषता है अनुभव। ज्ञान सुन लिया समझ लिया इतना पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ना है। अनुभव, किस चीज का अनुभव? अति इंद्रिय सुख का अनुभव। किस चीज का अनुभव? देही अभिमानी स्थिति का अनुभव। किस चीज का अनुभव? आत्मा देह से अलग है, आत्मा की पृथकता भिन्नता, इसका अनुभव, आत्मा में स्थित होने का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, वो अनुभव अभी करना है। मनुष्य से बहुत प्यार कर लिया, सतयुग में मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य से सीखा, द्वापर कलयुग में भी वही किया, अब समय है परमात्मा से प्रेम करने का, परमात्मा से सारे खजाने ले लेने का। इसके लिए इस ज्ञान की विशेषता क्या है, इस ज्ञान की विशेषता कहो, इस ज्ञान की महानता कहो, इस ज्ञान की नवीनता कहो, अनुभव। तो लक्ष्य रखना है अनुभवी बनने का, हर चीज का अनुभव। मधुबन का अनुभव, मधुबन का अनुभव क्या है? अलौकिक। यहाँ योग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही लग जाता है। तो ये जो अनुभव है, इसको हृदय की डिब्बी में उसको अच्छे से संजो के रखना है, स्टोर्ड रखना है, क्योंकि ये अनुभव ही काम आएगा। बाबा ने कहा है ना, उदास हो जाओ तो क्या हो जाओ, क्या करो, कहाँ जाओ? अगर शक्तिशाली बनने का आवश्यकता हो तो कहाँ चले जाओ? शांति स्तंभ में। तो शांति स्तंभ में जाना और शक्ति का अनुभव करना। व्यर्थ संकल्प तेज चले तो कहाँ चले जाना? हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल का अपना अनुभव है। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो कहाँ चले जाना? बाबा के कमरे में। और व्यर्थ और उदास हो जाओ तो रूरियान करने बाबा की कुटिया में। चार धाम, चारों धामों का अपना अपना महत्व और अपना अपना अनुभव। वहां पर बैठकर स्वयं को देह से अलग कर आत्मा उड़ चले ऊपर, और वह दिव्यता का अनुभव करे, उस श्रेष्ठता का अनुभव करे, वो होगा मधुबन का अनुभव। यहाँ का जो आंगन है उसमें जो पवित्र वाइब्रेशंस है उनको अपने साथ ले जाना जाते समय, वह अनुभव। एक साल जन्म जन्मांतर काम आएगी। तो इस स्थान को साधारण स्थान नहीं समझना, जहाँ हम अभी बैठे हैं, ये मुरली भी कहाँ चली थी 34 साल पहले? यही हॉल में, इसी हॉल में। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा किसको देख रहे हैं? जो सम्मुख है उनको लकी सितारों के रूप में देख रहे हैं, और जो दूर है, जो नीचे बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं जो कुछ लोग, उनको बाबा कह रहे हैं अथक सेवाधारी। आज की मुरली में देश मधुबन निवासी भी बैठे और विदेशी भी बैठे, उनके लिए क्या कहा बाबा ने? अभिलाषी है, चात्रक बनकर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से मुरली सुन रहे हैं, चात्रक बनकर मुरली सुनने के अभिलाषी है, याद प्यार में आज की मुरली से। और जो यहाँ है ही नहीं उनको याद कर रहा है बाबा मुरली की शुरुआत आज की, क्या कहा? जो शरीर से दूर है परंतु नजदीक किस आधार से है? दिल की लगन से दिलाराम के पास है, दिल की लगन से दिलाराम सम्मुख देख रहे हैं, लगन उनकी दिल की है। दिल रूबा बच्चों को मिलने आए हैं। कौन मिलने आया है? दिल वाला बाप मिलने आया है। कौन मिलने आया है? दिलाराम बाप मिलने आया है। तो कितनी सुंदर बात है कि हम अभी जहाँ बैठे हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है। कई सालों तक बाबा यहाँ आए, कई सालों तक यहाँ, रोज यहाँ के वाइब्रेशन कैसे है? अति शक्तिशाली, सुबह शाम योग होते रहता है। मधुबन में ऐसा कौन सा समय है जब योग नहीं होता है, बताओ? चारों धाम, दिन भर में तो कोई ना कोई बैठा ही रहता है, रात में सिक्योरिटी वाले, हर समय। शायद ही कोई ऐसा समय है कि जहाँ योग नहीं हो रहा है। यहाँ पर कई समय पहले कुछ वैज्ञानिक मधुबन में आए थे, और ये जो लाइन है बाबा का कुटिया से लेके तो शांति स्तंभ तक, यहाँ के उन्होंने वाइब्रेशंस चेक किए थे, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो वाइब्रेशंस है इस संसार में ऐसे वाइब्रेशंस और कहीं नहीं, इतने श्रेष्ठ, इतने प्योरिटी के से भरपूर, इतने पवित्रतम वाइब्रेशंस यहाँ पर है। तो ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आते ही क्या हो जाता है? आत्मा उड़ जाती है। तो चाहे इस सृष्टि में कहीं पर भी रहो, बाबा ने हमेशा कहा है अपने आप को क्या समझो, मधुबन निवासी समझो। हमारा एक घर तो है परमधाम और दूसरा घर है मधुबन, तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझना, ये आज बाबा ने कहा। चलो अभी सीधा पूरी मुरली पर आते हैं। तो बाबा ने आज किस बारे में कहा आप बताओ। तीन प्रकार के योगी, कौन से योगी है वो तीन प्रकार के? सबसे पहले फर्स्ट क्लास को योगी कौन से? जो योग, जो निरंतर योगी है। एक दूसरे योग लगाने वाले, और तीसरे 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 जो मेहनत करते हैं, मेहनत से विघ्न को मिटाते हैं, हटाते हैं। और तो ये तीन प्रकार के योगी है। अभी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले नंबर का योगी कैसा होता है। ये योगी निरंतर योगी अर्थात स्वतः योगी अर्थात नेचुरल योगी। उदाहरण किसका दिया? बाबा ने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, कौन सा? राजा। अगर कोई पूर्व जन्म के पुण्य है, जैसे द्वापर की शुरुआत की बात, द्वापर की शुरुआत में जब भक्ति थी, सतोगुणी भक्ति थी, उस समय अगर किसी का जन्म पुण्य के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, भक्ति अगर की है, पुण्य अगर की है, और किसी राजा के घर में जन्म लेता है कोई, तो संपत्ति, प्राप्ति, वर्षा, अधिकार, नशा स्वतः ही रहता है। क्या नशा रहता है? कि मैं राजा हूँ या राजकुमार हूँ, उसे याद नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे ही यहाँ पर भी सबसे फर्स्ट नंबर की योगी है वो कैसे योगी है? स्वतः योगी, निरंतर योगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। योग युक्त है, नेचुरल स्वमानधारी है। दो दिन के, चार दिन की राजाई ऐसे नहीं, सदा के योगी, निरंतर योगी, सतत योगी, ऐसी उनकी परिभाषा है। बटन दबाया संकल्प का और क्या हो जाता है? खजाने खुल जाते हैं, खजानों की खान, केवल बटन दबाने मात्र से। प्राप्तियों का भंडार कैसा है? भरपूर है वर्षे के आधार से। तो ये है फर्स्ट नंबर के योगी। तो हमें लक्ष्य कौन सा रखना है? फर्स्ट नंबर का। थोड़ा सा भी लक्ष्य नीचे ना हो हमारा, लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही रखना है। निरंतर योग लगा हुआ रहे, निरंतर उसकी याद हमारे हृदय में रहे, पहले योगी ये है। तो दूसरे योगी कौन से हैं फिर? बिजनेसमैन। उनका स्टॉक तो रहता है परंतु कभी नुकसान कभी फायदा, कभी प्राप्ति कभी अप्राप्ति, कभी संपन्न होते कभी एकरत होते तो कभी नहीं भी होते, कभी सब कुछ होता है और कभी कुछ नहीं होता है। और चाहिए और चाहिए, इस तरह की इच्छाएं होती है। उस कारण वो कैसे होते? असंतुष्ट होते हैं, खुद भी संतुष्ट नहीं और दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। और उनकी कैटेगरी कौन सी है? योग लगाने वाले, अर्थात बाबा ने क्या कहा? जरूर उनका योग लगाना पड़ता है, टूटता है तो ही लगाते हैं ना, टूट रहा है लगा रहे। बाबा के अभी पास है अभी दूर है, अभी अभी बाबा के प्यार का अनुभव हो रहा है और अभी अभी बाबा से वियोग, अभी अभी भूल गए, अभी अभी संसार में डूब गए, संसार की भाग दौड़ में कहीं खो गए। इनको बाबा ने कहा बिजनेसमैन। और तीसरे प्रकार है वो कौन सा है? डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं ना संसार में, 200 कमाया 200 खत्म, 2000 कमाया 2000 खत्म, दो घंटा योग किया दो घंटे का फल ले लिया, दो दिन चार दिन योग अच्छा, फिर दो घंटा चार घंटा अच्छा, कभी चार घंटा कभी छह घंटा, इस तरह के योगी वो भी कैसे हैं? बाबा ने कहा कभी दिल खुश तो कभी दिल शिकस्त, इस प्रकार की योगी है वो भी। भगवान को कौन से योगी पसंद है तीनों में से? निरंतर योगी। भगवान के नैनों में कौन समाया रहता है? निरंतर योगी। और एक वाक्य है आज की मुरली में शुरुआत में ही, जो निरंतर उसके नैनों में कौन समाया रहते हैं? जो दिलरुबा है वो, और जो सदा उसकी याद में रहते हैं वो, और आज की मुरली से उसके नैनों में कौन समाया रहता है? इधर कन्या है, जिनके दिल से कौन सा साज बजता है? बाबा अनहद साज, हद का नहीं, अनहद साज निरंतर बजता रहता है। ऐसे जो बच्चे हैं, वो बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, और बाप के दिल तख्त पर कौन बैठे हैं निरंतर? आज की मुरली से पार्टी नंबर 2, जिसका दिल वाला बाप के साथ जो सजा रहते हैं, दिल लगा हुआ है। अभी 30 तारीख को जो रिकॉर्डिंग हुआ था मुरली का, जो सुनाया गया था, कौन सी तारीख थी वो? 15 दिसंबर 2011 की मुरली। उसमें भी यही बात थी कि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन विराजमान होते हैं? दो, पहले वो जिन्होंने बाप को अपने दिल तख्त में विराजमान किया है, और दूसरे जो श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसे जो बच्चे हैं वो बाप दादा के दिल तख्त पर है। दिल तख्त पर बैठना अर्थात उसके अति प्रिय है, उसके समीप है, और इस तख्त के अगर नीचे आ जाते तो नीचे क्या है? माया का तख्त, फांसी का तख्ता, तख्त नहीं तख्ता। ऊपर है तख्त और नीचे है तख्ता। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। तो एक तो परमात्मा दिल तख्त होगा या तो फांसी का तख्ता होगा, कौन सा चाहिए? बाबा ने कहा एक तो ये या एक तो वो, चूज एनी वन। दिल तख्त पर, दिल तख्त पर बैठने के लिए कौन बैठ सकता है उसकी भी क्राइटेरिया है। उस स्थान पर हर एक नहीं बैठ सकता है। बाबा ने कहा नंबर वार है, पवित्र बनो योगी बनो, ये स्लोगन है। उसके बाद ही तो योगियों का विस्तार किया बाबा ने आज। जिसमें जितनी पवित्रता है वो वहां बैठ सकता है। जितना जिसका योग है, दो आधार बताए ना, एक योग और एक पवित्रता। योगी बनो पवित्र बनो, इस स्लोगन के आधार पर ये तीन कैटेगरी बाबा ने देखी आज। तो सबसे पहले जिनकी पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होती, मनसा वाचा कर्मना स्वप्न तक भी, ऐसे जो संपूर्ण पावन पवित्र है वो उसे अति प्रिय है, और जिनका योग सदा ही लगा रहता है वो उसके दिल तख्त पर बैठते हैं। नीचे तख्ता है और ऊपर तख्त है, क्या चाहिए बाबा ने पूछा है। अगर संकल्प में भी कहीं पर भी रस्सी क्या जुटी हुई हो तो नीचे आ जाएगी। देह भी याद नहीं आए, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। अगर देह याद आया तो क्या हो जाएगा? कौन कौन याद आएगा? 20 बातें बताओ, अगर देह याद आ जाए तो क्या याद आएगा? देह याद आ गया तो क्या क्या याद आएगा? देह का परिवार, देह के संबंधी, और देह के पदार्थ, देह की दुनिया, देह की इच्छाएं, और देह याद आते ही क्या दिखता है? सब दिखेगा। स्त्री है कि पुरुष है, काला है कि गोरा है, छोटा है या बड़ा है, किस देश का है, गरीब है या अमीर है, किस धर्म का है, सब याद आ जाएगा। भूख याद आ जाएगी, प्यास याद आ जाएगी, देह से संबंधित सब याद आ जाएगा, देह की बीमारी याद आ जाएगी। जैसे लोगों को बीमारी तो रहती है पर डॉक्टर को देखते तो थोड़ी और ज्यादा आ जाती है, याद आती है सारी कंप्लेंट्स। देखते नहीं है तो कम याद आती है, देखते ही और ज्यादा याद आता है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। फाइल खुल जाती है पूरी की पूरी। तो देह की बीमारियां, और देह को याद आने से क्या याद आ जाता है? देह अभिमान आ जाता है। अच्छा, देह अहंकार, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं करता, सब याद आ जाता है। मालिक से नौकर बन जाते हैं। तो देह को याद, देह की स्मृति ऐसी है कि नीचे याद आ जाती है। देह याद आते ही देह का संसार याद आ जाता है। अब ये बताओ, जब देह को भूलते हैं तो क्या याद आता है? आत्मा याद आ जाती है, और घर ही आ जाता है और परमधाम सतयुग सारा चक्र हमारे अपने सारे स्वरूप सब कुछ याद आ जाता है। संगम युग कहाँ खड़े हैं, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का वर्षा, संगम युग का प्रारब्ध सब कुछ याद आ जाता है। जैसे ही हमें शरीर भूलता है, अतीन्द्रिय सुख जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है उसमें पावर भरना चालू हो जाती है। अशरीरी अवस्था शक्तिशाली अवस्था है, क्यों? क्योंकि शरीर से डिटैच्ड है। जैसे आत्मा शरीर से अलग होने का अनुभव करती है उसमें शक्ति आ जाती है। तो अनुभव इस चीज का करना है। तो हम बात कर रहे थे तीन प्रकार के योगी, फिर बाबा ने उसमें और विस्तार किया नीचे। जो तीसरे प्रकार के योगी है वो कैसे, हमने कहा कमाया और खाया और खत्म। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले, बिजनेस वाले और तीसरे राजा। बाबा ने वहां प्रश्न पूछा है, बच्चे किसके हो तुम? राजा के बच्चे और नौकरी शोभता है क्या? क्या बोला बाबा ने, शोभता है? भगवान के बच्चे पा लिया तुम्हारा गीत है, पाना है पाना है, ये अधिकार के बोल नहीं है। तुम्हें तुम्हारे गीत बदलने पड़ेंगे फिर, अगर पाना है पाना है। कौन से गीत है हमारे पाने वाले? पाना था तो पा लिया, गीत कौन से है हमारे? और तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, इस गीत को अभी चेंज करो तो फिर तुम्हें पाएंगे तो जहान पाएंगे। उल्टा करना पड़ेगा कि प्यार हमने जो पाया है, कि हमने प्यार जो पाया है दुनिया पा नहीं सकती, इस गीत को क्या कर दो फिर, बदली कर दो। पाने वाले हमारे बहुत सारे गीत है। तो बाबा कह रहे हैं पा लिया यह नशा हो, जब पा लिया तो वहां खोज खत्म होती है, फिर भटकना बंद होता है, फिर उलझन समाप्त होती है। तो पा लिया इस बात का अनुभव करना है कि हमने उसे पा लिया जिसे पाने के बाद और इस संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये जो वाक्य है इसको गहराई में अपने अंतर मन में, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में इसको जाने दो कि हमने जो पाया है सर्वश्रेष्ठ है संसार में, इससे बड़ा और कुछ नहीं है संसार में। तो पा लिया, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें क्या देने आया हूँ और तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें हीरे देने आया हूँ और तुम क्या मांग रहे हो, कागज। किसकी संतान हो? सागर की संतान। किसके बालक हो? संपन्न बाप के बालक हो। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए, बालक तो मालिक, मालिकपन का नशा रहना चाहिए कि उसका जो खजाना है वो सारा हमारा है। नौ प्रकार के खजाने गिनाए हैं भक्ति में, नवनिधि कहते हैं। ज्ञान में वो कौन से खजाने हैं हमारे? बाबा से हमें कौन से खजाने मिलते हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, तीन हो गए, और पवित्रता, शांति तो गुण शक्ति में आता है, और खुशी, और बाकी है दुआएं, पुण्य कर्म, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, खुशी, पवित्रता, दुआएं और पुण्य कर्म। ऐसे ये नौ खजाने हैं। खजाने तो अनगिनत है, संतुष्टता भी खजाना है, बोल भी खजाना है, ऐसे तो अनगिनत है, पर ये नौ कई जगह बाबा ने गिनाए हैं। तो सारे खजाने जो उसके हैं वो हमारे हैं। इसके लिए बाबा ने आज जो कहा ना, एक एक शब्द का अनुभव, एक एक वाक्य का, एक एक लाइन का अनुभव, इसे ज्ञान कहा है। फिर बाबा ने थोड़ा याद प्यार दिया आज की मुरली में, और एक बात कही बाबा ने बहुत, कि बाबा आज किस लिए आए हैं, मुरली सुना चलाने नहीं आए हैं, पार्टियों से मिलने आए थे फिर भी मुरली चला दी, उसका कोई एक राज है। वो कौन सा राज बताया? क्योंकि भगवान को खींच रहे कुछ बच्चे, वो जरूर कौन से बच्चे है? आज्ञाकारी बच्चे, जो स्वतः योगी है, जो फर्स्ट नंबर के योगी है, वो बच्चे उसे खींच रहे, भगवान को भी खींच रहे हो, भगवान भी उनसे मिलने के लिए आतुर है। कितनी उनकी पावरफुल स्टेज होगी, जो देश विदेश के बच्चे, ऐसे महावीर, क्या कहा बाबा ने, महावीर जो बच्चे है उनसे मिलने बाप आए है, उनके लिए ये मुरली चली है, ये राज है बाबा ने कहा इस मुरली में। तो इस मुरली का सार है, हमें क्या बनना है, एक महान योगी बनना है, एक महान तपस्वी बनना है, निरंतर योगी बनना है, नेचुरल योगी बनना है, स्वराज्य अधिकारी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी बनना है, ऐसा योगी बनना है कि जिसका योग निरंतर लगा ही हुआ हो, खजाने बस बटन दबाए सिम सिम खुल जाए और सारे खजाने सामने। आप और बाप स्लोगन था ना, इतना कंबाइंड रहो कि तीसरा कोई आकर अलग कर न सके। हमारा और उसका, उसमें जो खाई है, जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो धीरे धीरे कम कम होता जाए। हमें ये अनुभव हो कि हम जहां भी जा रहे हैं वो हमारे साथ है, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते, केवल बाबा के कमरे में गए और बैठे वो योगी नहीं, निरंतर योगी, ये हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ मुरली बाबा ने पूरी की। उसके बाद में पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा बाबा ने, फर्स्ट पार्टी बंगाल, बिहार और नेपाल, क्या कहा बाबा ने उनसे, याद करो, याद रखनी है थोड़ी चीजें, जब तक याद नहीं तब तक नशा कैसे चढ़ेगा, चिंतन कैसे होगा, चिंतन तो तब होता है जब बुद्धि में कुछ पहले से पॉइंट्स हो। इसके लिए अपनी डायरी में, कल भी मुरली में कहा था, पढ़ाई का भी रजिस्टर हो तो तुम्हारी चलन का भी रजिस्टर हो, दो रजिस्टर हो, याद है ना कल की साकार मुरली, दो रजिस्टर हो तो पढ़ाई की भी पॉइंट्स तुम्हारे कहाँ हो, बुद्धि में, हाँ उच्च पद पाना है बोला ना, तो पोता में तो देखना पड़ेगा, फिर पढ़ाई का भी रजिस्टर चाहिए, अच्छे अच्छे जो महावाक्य उसे लिख के रखना है डायरी में, और केवल डायरी में लिख के नहीं रखना, पढ़ते रहना, उसे याद करते रहना और उनके ऊपर फिर आगे चिंतन करना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी से क्या कहा बाबा ने, मुरली तो बहुत सुनी, वही बात कही उसमें भी, मुरली तो बहुत सुनी, अब क्या करना है, स्वरूप में लाना है, बालक सो मालिक, इसको स्वरूप में लाना है, स्मृति में लाना है। संगम युग की विशेषता क्या बताई बाबा ने उसमें, अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी स्मृति स्वरूप और अभी अभी क्या प्रारब्ध, साथ साथ हो, ऐसा नहीं कि प्रारब्ध उधर मिलेगा, यहीं पर प्रारब्ध है, अभी इसी समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, साथ साथ परमात्मा प्रेम का भी अनुभव हो रहा है, यही तो श्रेष्ठ स्थिति है। ये तो केवल मेहनत ही करते रहे उसमें क्या है। बाबा ने कहा अमृत वेले कोई फरियाद तो नहीं करते हो, फरियाद अर्थात मांगना, फरियाद अर्थात कंप्लेंट। फरियाद के दो अर्थ होते हैं, एक है कंप्लेंट और दूसरा होता है पुकार, याचना करना, कोर्ट में जाते हैं ना फरियाद लेकर, तो वो एक अर्थ है। तो बाबा कहते एक तो याद रहेगी या तो फरियाद। ब्राह्मण क्या मांगते हैं बाबा से, शक्ति चाहिए और क्या मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं ब्राह्मण भी, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए परंतु मांगते हैं बाबा से, क्या मांगते हैं, शांति दे दो, हमारा फलाना फलाना भी ज्ञान में चल जाए, बाबा से कहते हैं और क्या कहते हैं, हमको ठीक कर दो। अरे आप भक्तों को ठीक करने वाले हो और आप ही भगवान को मांग रहे हो तो क्या कैसे बाबा फिर से कहेगा, शोभता है ये। सोचो कोई देवी है मंदिर में, दुर्गा अष्टभुजाधारी शेर पर सवार, सारे भक्त सामने हैं और देवी को पुकार रहे, हे माँ हे जगत जननी, और देवी खुद किसको पुकार रही है, तो जो शेर पर सवार दुर्गा भाग रही है और पीछे भक्त और देवी भाग रही है बाबा के पास मदद के लिए, कैसा दृश्य है ये। भक्त कह रहे हैं माँ बचाओ और देवी कह रही है बाबा बचाओ, तो क्या हो जाएगा, भक्त कह रहे हैं कि हे पाप नाशिनी हे जगत जननी माँ हमारे दुख दूर करो, और ब्राह्मण आत्माएं कह रहे हैं बाबा पहले तुम हमारे दुख दूर करो फिर हम उनके दुख दूर करेंगे भक्तों के। अच्छा ब्राह्मणों को कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर तो, अगर ब्राह्मण दुख से मुक्त है तो। बाबा ने आज कहा प्रभात में आ गए, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, रात समाप्त हुई, एक पार्टियों से मुलाकात में है ना लास्ट, प्रभात में आ गए, रात खत्म हुई, दुख की दुनिया से किनारा कर लिया। दुख हो नहीं सकता, दुख की लहर आ नहीं सकती, ऐसा तो हो तो बहुत बढ़िया, परंतु ब्राह्मण भी थोड़े थोड़े दुखी रहते हैं अंदर से। ठीक तो है कहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। तो दुख दुख का अनुभव, दुख से कैसे छूटा जाए। दुख तो एक अंधकार की तरह है ना, वो तभी जाएगा जब प्रकाश आएगा। दुख से लड़ाई तो नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि दुख तो अंधकार है, अज्ञान है। वो किसी कमरे में सोचेगा अंधकार है 1000 साल से। अभी हमने सोचा कि अंधकार बहुत बलवान है, सारी सेना लेकर जाएंगे उस अंधकार को हटाने के लिए, तलवार लेकर जाएंगे और अंधकार से युद्ध करेंगे, तो निकलेगा क्या? कैसे निकलेगा अंधकार उस कमरे से? हमने संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प, मैं विजयी आत्मा हूँ, और तलवार लेकर गए अंधकार से लड़ाई करने के लिए, तो जाएगा वो? नहीं जाएगा। वहां किसको लाना पड़ेगा? बस अंधकार तो अभाव है प्रकाश का। हमारा अगर दुख है तो वो सुख का अभाव है, हम स्वस्थिति में स्थित नहीं है। स्वस्थिति में स्थित होने की निशानी आज बाबा ने कही है, कौन सी है? स्वस्तिका, कहा है ना वरदान में, तो ये हमारी निशानी है नॉलेजफुल होकर। तो जहाँ ज्ञान आ जाता है, जहाँ समझ आ जाती है, वहाँ अंधकार तो विलीन हो जाएगा, वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। इसके लिए अग्र पूजा, सबसे प्रथम पूजा गणेश की होती है। कोई भी शुभ कार्य से पहले, वरदान में बोला है ना बाबा ने, इसके लिए हर संकल्प करने से पहले, हर कर्म करने से पहले क्या करो? सोच समझ कर, समझदार बनकर, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति पर स्थित होकर कर्म करना है। ये हमारा नहीं, हमारा प्रतीक है। हम बात कर रहे थे दुख की। अगर जीवन में अब भी दुख है, मतलब ज्ञान की कमी है। आंसर, ज्ञान को बढ़ाओ। और ज्ञान मिलेगा कहाँ से? मुरलियों से। इसके लिए मुरलियों का चिंतन करना बहुत जरूरी है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी सबने लेट एडमिशन ली है यूनिवर्सिटी में, लेट ली या जब से आए तब से है सब? भगवान कब से आ चुका है संसार में और हमने एडमिशन बहुत लेट ली है, तो पढ़ाई पास करनी पड़ेगी। कभी एक मुरली में बाबा ने कहा है विदेशियों से मुलाकात में कि विदेशियों को फंसने की बहुत आदत होती है, परंतु अभी फास्ट जाने की आदत डालो, तीव्र पुरुषार्थी। पहले ही तो कहां कहां रहकर भगवान को पहचान लिया, डबल पर्दा क्रॉस कर कराया है बाबा ने एक मुरली में कहा है। पहला पर्दा धर्म का पर्दा, जाति का पर्दा, रस्म का पर्दा, परंपराओं का पर्दा, लोकलाज का पर्दा, और दूसरा पर्दा साधारण तन का पर्दा। भगवान जो साधारण तन में आया था उसको पहचान लिया, तो ये दो पर्दे को तुमने क्रॉस किया है और भगवान के पास आए हो। तो उसके पास आए हैं तो वो करो जो वो चाहता है। अगर उसके पास आकर भी अगर हम नौकरी रह गए, वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? तुमको ताज तख्त और तिलक की जागीर देने आया हूँ, और तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? मैं तुम्हें खजाने देने आया हूँ और तुम 1 किलो 2 किलो मांग रहे हो। मैं हीरे देने आया हूँ, तुम कागज मांगते हो, उसके लिए कागज ही है नहीं है और क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ पर तुम मांग क्या रहे हो? तुम इसके लिए शोकता है, पूछा ना बाबा ने। तो हम बात कर रहे थे याद और फरियाद की। फरियाद अर्थात कंप्लेंट। एक गुरुकुल था, जिस गुरुकुल में एक नियम था, जो भी विद्यार्थी वहां सीखने आता था वो 10 साल में केवल 2 ही शब्द बोल सकता था, बाकी मौन की विद्यालय थी वो, पुराने जमाने की, कोई बुद्धिस्टिक बौद्धियों की। तो वहां पर एक नया शिष्य आया, 10 साल तक मौन, 10 साल तक उसे अवसर दिया गया बोलने का, केवल 2 ही शब्द। तो उसने क्या कहा? खाना गंदा, ये शब्द बोले 10 साल के बाद। 10 साल रहा, शिक्षा ली मौन में सब कुछ, एक बार बोलने का 2 ही शब्द, कहा खाना गंदा। फिर 10 साल और गुजर गए, उसके बाद में आया, फिर कहा कि बिस्तर कठोर, 2 ही शब्द बोलने थे। तीसरी बार फिर आया और 10 साल के बाद, 30 साल का पूरा अवधि था, अब जाने का समय था, उसने कहा नहीं हो सकता, नहीं होता, इतना ही नहीं होता। तो उसने गुरु ने कहा ठीक है, और वो चला गया। गुरु ने अंदर में सोचा कि जिस व्यक्ति को 10 साल में केवल 1 ही बार बोलने का अवसर मिलता है, वहां पर भी वो क्या करता है, कंप्लेन, ये ज्ञान लेने का अधिकारी नहीं है, इसके लिए इसको जाने दो। सोचो हमारे पास अगर कोई आ जाए, बार बार कंप्लेंट लेकर आता है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा होता है, तो एक दो बार तो ठीक लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। तो भगवान के पास हम अगर बार बार कंप्लेंट लेकर ही जाए, फरियाद लेकर, तो उसको कैसे लगेगा। तो याद है या तो फरियाद है, फरियाद है तो याद नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कई आत्माओं की आदत होती है कंप्लेंट करने की, हर बात में जहां पर भी जाएंगे कंप्लेन, ये कमरा अच्छा नहीं है, ये सेंटर अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है, ये जॉब अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो तुम अच्छे हो जाओ तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। कभी मुरली में बाबा ने कहा, ना तो स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। क्या कहा था, ना तो स्थान बदलेगा, ये स्थान अच्छा नहीं है, ये सेंटर अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, ना स्थान बदलेगा, ना ही व्यक्ति बदलेंगे जो आसपास तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में है, परिवार में है, डिपार्टमेंट में है, ना व्यक्ति बदलेंगे, और जो परिस्थिति है वो भी नहीं बदलेगी, और विकराल परिस्थिति आएगी। किसे बदलना है, तुम्हें ही बदलना है, तुम्हें अपना दृष्टिकोण ही बदलना है, तो सब बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी। इसके लिए आज से इस मुरली से एक जो लेसन सीखना है, नो कंप्लेंट्स, जो भी प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहना। और कंप्लेंट कर करके भी हमको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कई देखे गए हैं, कई सारे भाई जो यज्ञ में आए, पहले एक डिपार्टमेंट में गए, वहां देखा कि यहाँ का शेड्यूल अच्छा नहीं है, योग करने को टाइम नहीं मिलता है, चलो चेंज कर दो, उसको चेंज कर दिया, दूसरा डिपार्टमेंट में भेजा। दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, सहयोगी साथी योगी नहीं है, कुछ और करते हैं योग के सिवा, चलो ये डिपार्टमेंट चेंज। तीसरा डिपार्टमेंट में गया, ये इंचार्ज ठीक नहीं है, चलो चौथे डिपार्टमेंट में भेजा। चौथे डिपार्टमेंट में और कोई यहाँ का और कोई और दूसरी समस्या, ऐसे जो थे अभी घर पे है, कंप्लेंट्स, हर बात की कंप्लेंट। तो जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं है। नंबर वन योगी अर्थात सदा याद में रहने वाले, फरियाद में नहीं। और बाबा ने और एक चीज याद की कही, याद अर्थात फुल स्टॉप, फरियाद अर्थात क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं उसमें। हमने बाबा को बताया फिर भी बाबा ने मदद क्यों नहीं की, हम बाबा से मिलने आए पर बाबा आया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क्स। बाबा निरंतर साथ है, वो तो आ रहा है पर हमारा मिलन तो निरंतर ही हो रहा है, अमृत वेला हो रहा है, हर समय हो रहा है, कोई प्रश्न नहीं। जीवन में प्रश्नों से जैसे हम पार चले गए, अब कोई प्रश्न नहीं रहे, अब कोई उलझन नहीं रही। उलझन तो बाबा ने कहा ना, लौकिक बाप का वर्षा, यहाँ तो खुशी है, अलौकिक बाप अलौकिक वर्षा, अब क्या चाहिए। और अभी भी कंप्लेंट ही करते रहोगे। परीक्षाएं तो होगी ना, निश्चय की परीक्षा नहीं तो पता कैसे चले। माँ बाप कभी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहाँ परीक्षा ना हो, कोई पेपर ही ना हो, पेपर तो होंगे ना, पेपर तो होने ही चाहिए, पेपर होंगे तब तो पता चले कि कितने पानी में हो। सब हमारी तारीफ ही करते रहे और हम कहे हम महान योगी, अच्छा लड़ो, निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ मान अपमान सब में एक रस, तो कौन मानेगा। कोई अपमान करे उसके बाद में अगर कोई अचल है तो कहे भाई योगी है। अगर सब कुछ छीन लिया जाए, मान प्रतिष्ठा पद धन संपत्ति, और फिर भी हम अचल है तो कहेंगे योगी है। अपमान हो गया फिर भी हम अचल है तो योगी है, निंदा हो रही है फिर भी हम अचल है फिर तो हम योगी है। सारे प्रशंसा की प्रशंसा कर रहे हैं और हम सोच रहे हम योगी है, ये कोई योगी अर्थात समभाव, इक्वानिमिटी, योगी अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी का की बात है गीता में, तो वो बात वहां पर बाबा ने कही। उसके बाद हाँ, तो वो तो स्लोगन है हमारा। और एक बात, हाँ, एक जो चर्चा का विषय है, योगी किसे कहा जाएगा, योगी के क्या लक्षण है। आज की मुरली को छोड़कर योगी अर्थात जो एक रस रहे, योगी अर्थात अप्रभावित, योगी अर्थात अस्पर्श की अवस्था है, संसार में है परंतु यहाँ नहीं है, योगी अर्थात निरंतर साक्षी भाव, इस ड्रामा को, इस खेल को जो निरंतर साक्षी होकर देखते रहता है। यहाँ की कोई भी बात आंतरिक अवस्था को प्रभावित नहीं करती, वो साक्षी की अवस्था जो है वो योगी की अवस्था है। और योगी के क्या लक्षण है, संतुष्टता। किसी भी परिस्थिति में योगी संतुष्ट रहता है, संतुष्टः सततम योगी, गीता में वाक्य है, योगी अर्थात जो निरंतर संतुष्ट है, सब कुछ मिल रहा है तो भी संतुष्ट, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी संतुष्ट। विवेकानंद के जीवन में दिखाए, कभी कभी उसको महलों में स्थान मिल रहा है रहने के लिए, कभी कभी वो फुटपाथ पर सो रहा है, कभी कभी उसका स्वागत हो रहा है कहीं कहीं जगह पर, कहीं कहीं लोग उसको गांव से पत्थर मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो इतना जवान और भीख मांग रहा है, काम नहीं करने आता है, काम करना चाहिए तुमने तो, ये क्या सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए और भीख मांगने निकले हो, भिक्षा मांगने, तुम्हारे जैसे युवकों ने तो काम करना चाहिए। समभाव हर परिस्थिति में, ये योगी की परिभाषा है। इस संसार की कोई कमलवर्त अवस्था, अस्पर्श अवस्था, अनटच्ड, इंटैक्ट, बाबा ने कहा है ना मुरली में, आत्मा निर्लेप नहीं है, वो समझते हैं निर्लेप है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूँ, ये हमारा समान है। एक निर्लेप हूँ अर्थात किसी के बोल, किसी का व्यवहार, गलत बोल, इससे अप्रभावित, निर्लेप अवस्था, ये योगी की परिभाषा है। उसके बाद आगे क्या कहा बाबा ने, सेवाओं के लिए कहा कुछ, मार्क्स जमा करने की विधि क्या बताई, मार्क्स किसके जमा होंगे, रजिस्टर में किसका जमा होगा, आज की मुरली से थर्ड पेज याद करो जरा, किसका जमा होगा, जो सहयोग देंगे सेवा में उनका जमा होगा, जो केवल हाजिर होंगे उनका जमा होगा, जो डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे उनका जमा होगा, और किनका जमा होगा, जो सहन करेंगे, जो जितना ज्यादा सहन करेगा उसका उतना ज्यादा जमा होगा। सहन करने वाले ही बाबा ने कभी क्या कहा है, सहनशाह बनते हैं। और किसका जमा होगा, जो तन मन धन अर्पण करेंगे उनका जमा होगा, रजिस्टर में उनका जमा होगा। हाँ, ब्राह्मणों को इकट्ठा होना ही है। फिर बाबा ने कुछ भविष्यवाणियां की है आज की मुरलियों में, क्या क्या कहा, सारे ब्राह्मण अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या 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 करना पड़े, अगर दिल्ली में इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली को अपना बनाना पड़ेगा, अगर आबू में इकट्ठा हो जाए तो आबू रोड को अपना बनाना पड़ेगा। बाबा ने कलकत्ता के विक्टोरिया ग्राउंड को याद किया, क्या कहा, वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा, तुमको पूरा पुकारेंगे हमारे मकान में आओ, और क्या कहेंगे, आओ पधारो। ये राष्ट्रपति भवन भी एक दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर बन जाएगा। फिर हम मुरली कहाँ सुनेंगे, राष्ट्रपति भवन में बैठ कर, ठीक है ना नीना भाई। और फिर हम उसके मुरली सुनने के बाद बाजू में मुगल गार्डन भी है, बाबा हमेशा मुगल गार्डन को याद करता है, खास कर उसका जो माली है उसकी पगार पर बाबा की बहुत आंख है, लंबे समय से हमेशा याद करते हैं ना बाबा, मुगल गार्डन के माली की पगार अच्छी है। तो मुरली होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मुगल गार्डन थोड़ा घूमने, अभी तो बंद ही रहता है, साल में एक बार खुलता है फरवरी में। तो ये राष्ट्रपति भवन भी तुम्हारा हो जाएगा, विक्टोरिया ग्राउंड भी तुम्हारा हो जाएगा, सब तुमको बुलाएंगे कि आओ, और लोग भी बलिहार जाएंगे, देखेंगे कि अव्यक्त ब्रह्म हो गया, उसके बाद बाकी संस्थाएं तो टूटती है और ये संस्था बढ़ रही है। आज तक जितनी संस्थाएं आध्यात्मिक, कैसी संस्थाएं, वो जैसे ही उनका जो फाउंडर है, संस्थापक, वो जैसे ही जाता है वो संस्था नीचे आने लगती है ज्यादातर। भगवान और ये संस्था ऐसी है कि हमारी जब विदेश सेवा कब चालू हुई, बाबा अव्यक्त होने के बाद 69 और 74 से विदेश सेवा चालू हुई, कितनी अद्भुत बात है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बाबा ने कहा है, ये कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि स्थापना कौन कर रहा है? स्वयं भगवान ने इसकी स्थापना की है। इसका भी निश्चय, निश्चय बहुत बड़ी चीज है। निश्चय के पेपर आएंगे, निश्चय की परीक्षा होगी कि ये संस्था कौन चला रहा है। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चल रही यहाँ जो कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? स्वयं भगवान इसको चला रहा है, उसके आदेशानुसार ये सब कुछ चल रहा है और उसने हमें चुना है अपने कार्य के लिए। ये जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, हमारा ये जो निश्चय है और सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाए। तो ये उसके बाद में दिल तख्त वाली बात तो हमने कह दी, और उसके बाद में तीसरा भी कह दिया, और फिर चौथा, चौथी पार्टी से क्या कहा बाबा ने? विजय की बात कही। क्या कहा? जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारा कैसा नारा है? मुख का नारा नहीं है, किसका नारा है? कौन सा नारा है? प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कौन सा नारा? विजय। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजयी आत्माओं के लक्षण क्या बताया बाबा ने? विजयी आत्मा सदा सदा खुश रहेंगी, सदा हर्षित रहेंगी। दुख की लहर वहां आ नहीं सकती, किसी भी सर्कमस्टांस में भी, कैसी भी परिस्थिति हो, हर्षित रहेगी। रात समाप्त हुई, प्रभात में आ गए, दुख की दुनिया से किनारा कर लिया। कितनी काव्यात्मक भाषा है ये, पोएटिक। प्रभात में आ गए, सुबह हो गया है। तो विजय आत्माओं की पहली निशानी जो है वो है खुशी। दूसरी निशानी क्या है विजय आत्माओं की? जो हाँ बाबा ने ये लिखा है, उनका झंडा सदा लहराते रहेगा, नीचे नहीं आएगा। विजय का झंडा पक्का है, प्रश्न पूछा है बाबा ने। और इस मुरली से छोड़कर जो विजयी होते हैं, जो विनर्स होते हैं, उनकी क्या निशानी होती है? क्या होता है उनमें? सोचो एक राजा बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर अपने राज्य में वापस आ रहा है, हाथी पर बैठा हुआ है, सारा गांव नगरवासी सारे खड़े हैं, तो वो सब देखकर उसे क्या लगता है? बस नशा, उसको नशा रहता है ना कि मैं विजयी बनकर आया हूँ। तो विजय की निशानी है नशा, विजय की निशानी है खुशी, विजय की निशानी है और क्या होता है उसमें सोचो? जय जयकार होता है। उनको क्या लगता है अपने बारे में? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। जितनी बार सोचो आपकी एक कमजोरी है, आप कई समय से उस पर प्रयत्न कर रहे हो ताकि वो चली जाए, और एक दिन चली जाती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर ये कमजोरी गई तो अभी दूसरी भी जा सकती है। तो एक करके एक, टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक कमजोरी को एक एक दिन छोड़ना है, विजय प्राप्त करना है उसके ऊपर। तो नशा चढ़ेगा ना, तो नशा, आत्मविश्वास और क्या होता है विजय आत्मा? उसकी आंखों में चमक होगी, गर्व महसूस करेगा वो, समझेगा ना, मैंने ये कर दिया तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका लेवल जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसको कोई छोटी मोटी चीज की कोई चिंता नहीं होगी, निश्चिंतता रहेगी, पर खबरदार भी रहेगा, सतर्क भी रहेगा, अलर्ट भी रहेगा, वॉचफुल भी रहेगा, विजिलेंट भी रहेगा। और तो ये सब निशानी है विजयी आत्माओं की। तो बाबा ने तो क्या कह दिया है कि तुमने कल्प कल्प अनगिनत बार विजय प्राप्त किए, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। तुम संपूर्ण पवित्र बने हो, कल्प कल्प कोई बड़ी बात नहीं है, तो अभी भी बन सकते हो। संपूर्ण पवित्रता, यहाँ तक तुम्हारे स्वप्न भी पवित्र, संकल्प पवित्र, हर बोल शुद्ध पवित्र, श्रेष्ठ महान वरदानी समान युक्त, ये हुआ है। ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है ये सब जो बाबा बातें कर रहा है ये सब असंभव सी है, परंतु भगवान कह रहा है कि तुमने ही ये किया है और अनगिनत बार किया है, ये हो सकता है, ये संभव है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चार पार्टियों से बाबा ने बात की, चार ग्रुप से, और मुरली चलाई। ये था आज की अव्यक्त वाणी। अभी अभी बाबा ने जो मुरली चलाई वो पढ़ी है किसी ने? 15 दिसंबर की, जिसमें बाबा ने कहा ना, क्या ले लो और क्या दे दो, फिक्र दे दो और फकूर ले लो। उसमें भी तीन तख्त वाली बात थी उस मुरली में। और एक बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर सुनाई नहीं गई, वहां पर तो कट कर दिया। संडे और गुरुवार क्या करो, संडे को जैसे दुनिया में छुट्टी होती तो तुम्हें अपनी कमजोरी को छुट्टी देनी है, तो आज क्या है संडे, तो आज संडे को एक कमजोरी को छुट्टी दे दो। सबको दिए तो बहुत अच्छा, एक से चालू करो तो धीरे धीरे सारी छूट जाए। तो संडे को एक कमजोरी को छुट्टी दे दो और गुरुवार को वरदान ले लो। गुरुवार किसका दिन है, सदगुरु का दिन है, तो गुरुवार को वरदान ले लो एक। ये दो कार्य उसमें बाबा ने दिए, समय और संकल्प की तरफ ध्यान, ये भी एक बात उसमें कही है। तीन तख्तों की बात कही है, एक स्वराज, एक ब्रुकटी का तख्त, एक स्वराज, एक तो भविष्य तख्त और एक बाप का दिल तख्त, ऐसे तीन तख्त की बात भी उसमें कही है बाबा ने। तो कहने का भाव, रोज जो मुरलियां चल रही है और जो बीच बीच में अव्यक्त मुरलियां चलती है संडे को और बीच में जब बाबा आते, तो इन सारी मुरलियों का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, एक दिन भी मिस न हो, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, मैं तुम्हें गुहे गुहे बातें बताता हूँ, तुमको मैं नई नई बातें बताता हूँ। शायद जिस मुरली को हमने मिस कर दिया, उसी मुरली में कोई ऐसी एक पॉइंट होगी कि हमारी 10 साल से एक कमजोरी चालू थी, वो पॉइंट सुनते ही चली गई। इसके लिए उसमें खजाना है, ये उसका एक बार पढ़ना नहीं, शास्त्र में लिखा है पाठ करते हैं, गीता का पाठ होता है, पाठ अर्थात बार बार पढ़ना, एक बार पढ़ना नहीं, पाठ, पाठ शब्द का क्या अर्थ होता है, बार 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 पढ़ना। आपने मधुबन की दिनचर्या वहां लिखी है हिस्ट्री हॉल के आगे, पढ़िए ना मधुबन की दिनचर्या, उसमें 2 और 4 बजे के लिए एक टाइम, एक शब्द लिखा है, क्या करते हैं वहां पर, 2 और 4 के बीच के लिए एक शब्द है, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। तो रोज क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है थोड़ी सी बैठकर। स्टूडेंट देखा है ना कैसे पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आती है तो सब भूल जाते हैं, 10वीं 12वीं, या मेडिकल में तो हमारा ऐसा है कि एक कमरे में बंद हो जाते हैं, बस पोस्ट ग्रेजुएशन की जब स्टडी करते हैं, दुनिया से कोई खबर ही नहीं, कोई खबर नहीं दुनिया, दिन रात पढ़ते रहते हैं, सारी दीवारों पर वही लगे रहते हैं फॉर्मूले, मलेरिया ये बीमारी, उसकी ये ड्रग्स, उसकी ये बीमारी, इसकी ये इलाज, ये इन्वेस्टिगेशन, सब जगह वही लगा रहता है, दिन रात ऐसा नशा रहता है पढ़ाई का। तो ये भी क्या है, पढ़ाई, इसको हल्का नहीं करना, मुरली का महत्व, मधुबन का महत्व, ये दो चीजें ऐसी, इसको कभी भी हल्का नहीं करना जीवन में। जो रोज की मुरली है उसका गहन डीप स्टडी करनी है, उसकी ऐसी कोई पॉइंट उसमें से निकालनी है, और कहाँ करनी है ये भी बाबा ने कहा है, एकांत में। मुरलियों में आता है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, एकांत में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो एकांत में पढ़ाई करनी है, फिर उसका डिस्कशन भी करना है, उसकी चर्चा भी करनी है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि मुरली की चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या शब्द यूज किया, ड्यूटी। क्या हम वो कर रहे हैं, हम बाकी चर्चा सारी दुनिया भर की कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर मुरली की चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या ये पूछते हो कि आज का वरदान क्या था, कितने पूछते हैं, बहुत कम, आज का वरदान क्या था, केवल वरदान, ऊपर की लाइन नहीं, अंदर का विश्लेषण क्या था, आज का स्लोगन क्या था, उस पर क्या हमारा चिंतन चला, बहुत डीप है हर चीज यहाँ पर। और वो जितना हम चर्चा करेंगे तो ही बुद्धि में रहेगी। अभी कोई भी क्लास सुनने जाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी क्लास थी, दादी जानकी का क्लास सुनने गए, कैसी क्लास थी, बहुत बढ़िया क्लास थी, अरे तुम क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, अच्छा क्या था वो मत पूछो, बस था क्या वो मत पूछना, पर बहुत बढ़िया थी, तुमको आना चाहिए था, बहुत मिस किया तुमने, कहाँ थे, ऐसे करते हैं ना, पर क्यों नहीं। अभी दादी का कोई भी क्लास देखो, उसमें 2-3 दिन पहले मुरली के बीच की कोई एक लाइन दादी बोल देती है, 2-3 दिन पहले की मुरली की बीच की कोई एक लाइन, कैसे वहां से उठाया और कैसे समय पर उसको याद कर बोल देना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। बुद्धि कैसी हो गई है, बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान कहाँ ठहरता है, क्या चाहिए बुद्धि, सोने का बर्तन। तो सोने का बर्तन तो तभी होगा जब वो शुद्ध होगा, जब वो पवित्र होगा, जो परचिंतन, परदर्शन, व्यर्थ की बातें, यहाँ वहां की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम्हें क्या करना है। बाइबल में उदाहरण आता है कि जीसस क्राइस्ट जो तीन दिन के बाद फिर से आ जाता है, रिजरेक्शन जिसको कहते हैं, और उसका एक शिष्य रहता है, वो उसको पीटर पूछता है अपने बारे में कि मेरा आपसे प्यार है, मेरा आपका भी मेरे से प्यार है, और फिर वो पूछता है ये जो जॉन है इसके बारे में आप क्या सोचते हो। वो उसका कहता है वो उसका और मेरा है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है उससे। क्या वाक्य है, व्हाट इज दैट टू यू, दैट इज बिटवीन हिम एंड मी, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। तो यहाँ पर हम यहाँ क्यों आए, इसको भूलना नहीं है कभी भी। मधुबन में क्यों आए, इधर उधर की बातें करने, परदर्शन करने, किसी की गलतियां निकालने, ये करने आए थे, पर चिंतन करने, संसार की चर्चा करने, यहाँ आए किस लिए थे, कितने कम दिन आए हैं, और उसमें भी अगर हम व्यर्थ की बातें करेंगे तो हमारा जो आने का मकसद ही नाकाम हो रहा है। हम आए थे यहाँ तपस्या करने, एक यहाँ तक ले लो कि ब्राह्मण हम बने ही किस लिए थे, हम आए थे तपस्या करने, हम आए थे श्रेष्ठ अनुभव करके यहाँ से जाने, कितनी बड़ी यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, फ्लाइट और फिर ट्रेन, तो कहीं कुछ, तो कभी बस, कभी गाड़ी, ये सब करके यहाँ किस लिए आए, श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए। वही नहीं किया तो क्या फायदा। तो अपने आप को योग युक्त रखना, अव्यक्त रखना, व्यर्थ में न जाए बुद्धि, हमारी बुद्धि निरंतर ज्ञान का ही चिंतन करते रहे। बाकी जैसे वहां कहा ना, व्हाट इज दैट टू यू, तुमको उससे क्या लेना देना है, जो हमारे काम की चीज है बस वही, और हमारे काम की चीज है केवल मुरली और तपस्या। मधुबन में ये दो ही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। सेवा भी कर रहे हो, वो भी किस लिए, श्रेष्ठ स्थिति के लिए, दुआओं के लिए, ये बात याद रखना। और किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा तो समय नहीं है उसके लिए, फिर भी बचपन से मुझे भगवान की खोज थी, और वैसे तो बहुत विस्तार है, इतना समय नहीं है, पर जब मैं 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दिया उसके बाद में मेडिकल की पढ़ाई की एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, सेवाग्राम इंस्टीट्यूशन, तो उनकी अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पर MBBS के लिए एडमिशन मिलती है। तो उनके तीन सब्जेक्ट तो रहते ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में एक चौथा भी सब्जेक्ट था जिसका नाम था गांधीयन थॉट्स, क्योंकि वो सेवाग्राम महात्मा गांधी जी का स्थान है। तो वो जो ऑटोनोमस बॉडी थी, तो हमारे पिताजी हमारे लिए वो किताबें लेके आए, तो उसमें एक सब्जेक्ट था गांधीयन थॉट, जिसमें महात्मा गांधी का जो लाइफ है वो स्टडी करनी होती है। तो मैं कहूंगा कि वहां से चालू हुआ, जैसे ही वो किताब हमने पढ़नी चालू की, धीरे 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 लगा कि जैसे इसमें जो बातें हो रही है ये हमारे जीवन में है। और उसका जो एक चैप्टर था ब्रह्मचर्य 1, ब्रह्मचर्य 2, दो पार्ट है उसके, वो पढ़ने के बाद, वो किताब पढ़ते पढ़ते ही, जैसे कि मुझे याद है 6 मास तक तो संपूर्ण एक मौन की अवस्था आ गई, संपूर्ण मौन। और फिर उसके बाद में हमारा रिजल्ट आया 12th स्टैंडर्ड का, और उसमें अच्छे मार्क्स थे, 98% इसमें, और मैथमेटिक्स ग्रुप में 95%। तो मेडिकल में एडमिशन हो गई, MBBS में एक दूसरी जगह। तो मुझे याद है कि वो पूरा जो MBBS था 4.5 साल मैं खोज में था, भगवान की खोज में। और उसी दरमियान हमारी जो बड़ी बहन थी 1 साल बड़ी, वो भी MBBS कर रही थी दूसरी जगह, वो ज्ञान में आ गई। तो हम तो इधर भगवान को खोज रहे थे, और वो ज्ञान में ऐसी आई कि उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, सीधा सेंटर में एक दिन अचानक किसी कारण से चली गई, उसको लगा बस ये मेरा है, और वो तब से ज्ञान में चल पड़ी। पर उसका भी हमारे घर में काफी विरोध हुआ। तो जब भी मैं घर आता था छुट्टियों में, वो हमारी बहन हमको ये बताती थी कि मैं तब बहुत भक्ति करता था, तो कहती थी तुम्हारी भक्ति कुछ काम की नहीं है, तुमको हमको जो पाना था पा लिया। तो मुझे आश्चर्य होता था, इसने ना भक्ति की ना कुछ किया, और पाना था तो पा लिया, इस तरह की गीत वो गाती थी। तो फिर मैं भी बहुत कुछ पढ़ते रहता था, और मुझे बड़ी दया आती थी उस पर कि बिचारी देखो इसको, इसके हृदय में भी भक्ति जाग जाए। तो मैं प्रार्थना करता था कि हे प्रभु इसको भक्ति दो, वो प्रार्थना करती थी बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। इस तरह से हम दोनों का बहुत ये था, विरोध था। तो फिर MBBS भी पूरा हुआ, परंतु एक था मुझमें सेवा का बहुत ज्यादा ये था भक्ति की वजह से, कि जो भी मरीज है जो भी है उसको परमात्मा समझ के, जैसे कहते हैं ना वर्कशिप ऑफ मैन एज गॉड, कि जो सामने है उसको ही भगवान समझो। फिर मैं छुट्टियों में आता था, मेरी बहन को कहता था देखो, वो कहती थी हम आत्मा भाई भाई समझते, मैं कहता था हम आत्मा भाई भाई नहीं, हम जो आत्मा है उसको ही परमात्मा समझते, अब बताओ कौन बड़ा है, तुम या हम। तो इस तरह से वो तो वाद विवाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा होते रहता था। MBBS भी पूरा हुआ, फिर वो इंटर्नशिप होती है एक साल, वो एक साल मुझे याद है हम दिन रात जैसे पेशेंट्स की सेवा करते रहे, उसमें सीखना लक्ष्य नहीं था, सेवा लक्ष्य था। वो भी पूरा हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो, हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि जीवन का लक्ष्य खाली सेवा करना था। तो और ये जो पांच साढ़े पांच साल जो थे, इसमें कई सारे संस्थाओं में जाना, वहां का अध्ययन करना या भक्ति करना, क्योंकि खोज थी अंदर ही अंदर कौन है भगवान। और मुझे याद है एक बार मैं एक ही बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी गया था, एक पांच मिनट के लिए बैठा, क्योंकि हमारी बहन एक बार जबरदस्ती में हमारी सिस्टर को कहीं सत्संग में लेके गया, और वो तो चुपचाप आई, पर आते आते कहती एक मिनट के लिए मुझे सेंटर जाना है। तो मैं तो अंदर नहीं जाता था, मैं बाहर रुकता था, वो अंदर जाती थी। एक ही बार अंदर गया सेंटर में, और एक महावाक्य चला कि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, बस उठ के वापस बाहर। फिर भी इनके प्रति बहुत मतलब ये था, क्योंकि पवित्र था थी, तो उसका तो बहुत ज्यादा आकर्षण था। वो भी पूरा हुआ, फिर उसके बाद में मुझे याद है कि जब MBBS भी पूरा, इंटर्नशिप भी पूरा, फिर हमारे भाई के पास गए जो मेरे से दो साल छोटा था, वो भी डॉक्टर था। मेरी बहन भी डॉक्टर, एक साल बड़ी, मेरा भाई दो साल बड़ा, वो नागपुर GMC में था। तो वहां पर उसके कमरे में हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए गए, तो पढ़ाई करते 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 फिर से वही भगवान की खोज फिर से चालू हो गई। तो हमने ये संस्था वो संस्था, ये सत्संग वो सत्संग, इधर जाना उधर जाना, कभी वो बौद्धिस्टिक टेम्पल, कभी मॉस्क, तो कभी सिख, कभी क्रिश्चियनिटी चर्च में, ऐसे मुझे ऐसी एक भी संस्था याद नहीं जहां पर मैं नहीं गया। इस संसार में जितनी संस्थाएं होंगी ऑलमोस्ट मोर देन 90% सब जगह जाना और उनका फॉलो करना, केवल जाना नहीं, वो जो कह रहे हैं वो करना। मुझे याद है 3 मास तक मैं एक बार केवल चर्च में ही गया, केवल दिन रात, मतलब वो पूरा जिस तरह का क्रिश्चियन फिलोसॉफी है उसका स्टडी, तो कभी देवी की भक्ति, तो कभी किसकी, तो कभी किसकी, जो भी नया मिलता था वो चालू। परंतु लक्ष्य ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा पंडित इस तरह बनना है, लक्ष्य था खोज थी एक अंदर ही अंदर, कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, उसे कैसे पाया जाए और उस तक पहुंचना है मुझे। तो धीरे धीरे इस तरह के जो संकल्प थे ये इतने और गहरे होते गए और गहरे होते गए, कि मुझे लगा कि अभी मैं इस संसार में नहीं रह सकता, भगवान को पाना है तो संसार को छोड़ना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो वहां पे इतनी सारी संस्थाएं थी, उसमें एक संस्था थी रामकृष्ण मिशन, आपने सुना होगा रामकृष्ण मठ एंड मिशन, तो वहां पर मैं जाया करा, जाने लगा, फिर वहां की किताबें, फिर वहां के सारे उपनिषद, फिर वहां का वो लिटरेचर, वो एक एक करते 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 1-2 मास में पूरा खत्म हो गया पढ़कर। और वो पढ़ने के बाद फिर तो फाइनल हो गया, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता है मेडिकल की पढ़ाई, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया छोड़ना है संन्यास। हमारे जैसे मेरा भाई तब फर्स्ट MBBS सेकंड MBBS में था, उसके कमरे में मैं रहता, तो उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी मौन, ये मेरा दूसरा मौन था, वो पहला मौन और ये दूसरा मौन लंबा समय जो चला। उसको एक दिन बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो एकदम डर गया वो, उसने कहा एक बार घर पे बता दो कि तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो। तो फिर हमने घर पे बताया तो बहुत जबरदस्त विरोध, बहुत मतलब बहुत, बात मत पूछो, कम से कम 150 लोग हमको समझाने के लिए आए कि भाई तू यही सब कुछ कर, तुम्हारे लिए यहाँ क्लिनिक खोल के देते हैं, ये करके देंगे वो करके देंगे। वो गणपति को पानी में डुबो दिया, फिर हमारी माता जी ने, संकट आ गया तो डुबो देते हैं। तो इस तरह से हमारे पिताजी ने भी बहुत कोशिश की, एक बहुत बड़ा लेटर लिखा था 6 पेज का, टू अटल बिहारी वाजपेयी, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मिशन, ऐसे तरह का कि कुछ करो इसको बचाओ नहीं तो हमारा पूरा ये हो रहा है, ऐसे वैसे करके बहुत कुछ चला ऐसा। फिर और एक बात आई, जब हमारे पिताजी को हम लेके गए रामकृष्ण मठ मुंबई में, और तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई इसके नाम पर बैंक का लोन है, वो कौन देगा। वहां के जो हेड थे ना स्वामी मठाध्यक्ष, उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम उनका लोन पूरा पे कर दो, क्योंकि MBBS में हमारे लिए लोन लिया गया था। फिर हम आए एक जगह जॉब किया 6 मास, वो भी गवर्नमेंट जॉब। वो 6 मास में हर महीने का बैंक लोन चुकता किया, फिर तुरंत रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। फिर भी हमारे पिताजी फिर गए और जो हायर ऑफिशियल थे उनको कहा इनका रेजिग्नेशन लेटर देना नहीं, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन को ही छोड़ के जा रहा है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में फिर हमने फाइनल कर लिया कि इधर ही जाना है। मुझे याद है एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया था कि वहां एक बैंक कोर्स करा रही थी, क्योंकि विवेकानंद पढ़ने के बाद में मुझे लगा दृष्टि जैसे ब्रॉड हो गई थी कि सारे धर्म भगवान तक जाते हैं, इसके लिए किसी का विरोध करने का क्या है, और लेट एवरीवन वर्कशिप विद मैजिस्ट्री। मुझे याद है मैं सेंटर पे जब गया पहली बार, एक बहन कोर्स करा रही थी तो मैं भी बैठ गया। तो बहन को मैंने, वो चैप्टर चालू था गॉड इज लाइट, तो बहन उसको बता रही थी जिज्ञासु को कि भाई देखो बाइबल में भी लिखा है। तो मैंने कहां लिखा है, तो उसने कहा बाइबल में लिखा है। मैं बोला कहां लिखा है, मार्क में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है, ल्यूक में लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी में लिखा है, कहां लिखा है। वो घबरा गई, तो बोली कल बताती हूँ बड़ी बहन को पूछकर। तो मैंने कहा छोड़ो इसको, ये भी अच्छी संस्था है, ठीक है चल रहा है, पर मैं इसमें नहीं जा सकता क्योंकि मुझे जाना है तो एकदम अंदर संपूर्ण समर्पण। और यहाँ देखता हूँ दूर से तो अंदर खाली बहने हैं, भाई तो कोई दिखता नहीं है इसमें। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो, मुझे याद है मैंने 50 इंस्टीट्यूशन की लिस्ट बनाई थी कि जहां मुझे जाना है, 50 इंस्टीट्यूशन, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, माता अमृतानंद में आर्ट ऑफ लिविंग करके 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 ऐसे 50 इंस्टीट्यूशन की, इसमें से कहां जाऊं। और फिर हमारे घर में तो चालू ही था, हमारी माता जी कहती थी कि मैं तो अभी बस तू अगर गया तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। मैंने कहा कूद जा। वैराग बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वैराग। और फिर ये सब जब चल रहा था बहुत, मुझे याद है फिर मेरा मंत्र दीक्षा, मैं एक बार बेलूर मठ में भी गया था और कितना कहां कहां कॉमन बुगी में बैठ कर ट्रेन में इधर घुमा उधर घुमा, इसके पास उसके पास, बहुत विस्तार है अभी तो समय नहीं है इतना बताने का। पर लास्ट जो चीज है, फिर मेरा फाइनल हुआ कि मुझे इधर ही जाना है रामकृष्ण मठ में। तो बाबा आ रहे थे 30 नवम्बर 2003 में, 30 नवम्बर 2003। तो ये 8 मास तक ये संघर्ष चालू था सारा, सब लोग रोकना और मैं और ही ज्यादा मतलब वैराग बढ़ते जाना 8 मास। तो जाने का जब दिन था 20-25 तारीख थी नवंबर की, तो हमारी सिस्टर ने कहा वहां तो तुम जाओ पर एक काम करो, बस एक बार माउंट अबू होते होते जाओ, जाना तो फाइनल है, संन्यास तो लेना ही है, परंतु जाते जाते माउंट अबू चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो वो हमको इधर लेके गए नागपुर सेंटर में। तो नागपुर सेंटर में हम जब गए तो वो, उसने कहा ये मेरा भाई है इसको जाना है, पार्टी निकलने वाली थी 26 तारीख को, बाबा आ रहे थे 30 तारीख को, 25 को निकलने वाली थी। तो उसने, बहन जी ने पूछा ये कौन से सेंटर पे जाता है, तो मेरी बहन ने पहले ही ट्रेनिंग दी थी ऐसा ऐसा बोलना। मैंने कहा वो अमरावती सेंटर पे जाता हूँ। तो उसने अमरावती सेंटर पे फोन लगा, ये आता है क्या, उसने कहा ये भाई तो कभी नहीं आया, वो बहन आती है। तो मैंने कहा फिर वो नहीं, मैं जो जहाँ मेडिकल ऑफिसर था ना छोटा गांव वहां जाता था। तो उसने कहा वहां फोन नहीं है पर। तो उसने भी सोचा अभी क्या करे। तो वो हम बैठे दोनों और वो बहन जी सीता दीदी नागपुर सेंटर, तो ये पुष्पा रानी दीदी। तो उन्होंने कहा ठीक है पर हम जाएंगे कैसे, हमारा तो रिजर्वेशन हो गया, तो आप कैसे जाओगे। मैंने कहा मैं मन ही मन बोल रहा था मैं तो पूरा भारत वैसा ही घुमाऊं, मुझे किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये जो संघर्ष चालू था उसमें भगवान को पाने की जो तीव्र था वो इतनी ज्यादा थी कि मुझे ऐसी अवस्था आ गई थी अगर अभी भगवान नहीं मिला तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, इतनी वो अंदर तीव्रता, इतनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई थी वो तीव्रता। क्योंकि जो भी मैं करता था उसका विरोध होता था, सत्यनारायण की पूजा कुंडली, फिर वो कई लोग मुझे समझाने के लिए आए, कई सन्यासी मुझे समझाने के लिए आए, कई गृहस्थी मुझे समझाने के लिए आए कि भाई तू इधर रह के सब कुछ कर। मुझे 6 ऐसे अननोन लेटर्स आए जिसमें इस तरह के लेटर थे एक सन्यासी के कि मैं रामकृष्ण मिशन में हूँ, मैं भी MBBS था और मेरे साथ धोखा हुआ और अभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हूँ, इसके लिए तुम बताना। अब किसने वो लेटर लिखे पता नहीं, ऐसे 6 लेटर आए अलग अलग ड्यूरेशन में, लंबे लंबे, पर मेरा निश्चय इतना ज्यादा था कि मुझे तो छोड़ना ही है, I cannot stay in this world। इतना वो वैराग इतना तीव्र था, इतना तीव्र यहाँ तक ये बाल बिल सब। तो उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो ऐसा है कि हमारी बहन ने कहा एक बार यहाँ, हाँ तो हम सेंटर पे थे तो उसने कहा ठीक है रिजर्वेशन नहीं है। फिर दूसरे दिन मुझे याद है मैं कॉमन बोगी में बैठा, वो पूरी पार्टी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, वो मुझे पता नहीं, मैं ना तो पार्टी को जानता हूँ ना किसी को जानता हूँ। और फिर हम निकले माउंट आबू के लिए और अंदर ही अंदर सोच रहा था मैं, अभी मुझे भागवत भी पढ़ना बाकी है, अभी ब्रह्म सूत्र भी पढ़ना बाकी है, अभी वो उसका गीता का वो दूसरा एडिशन है वो पढ़ना बाकी है, सोचते सोचते मैं आ रहा था इधर। तो यहाँ पहुंचा और कहाँ जाना है वो मुझे पता नहीं, कौन आ रहा है मुझे पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो पार्टी उसमें से वो बहन खाली, उसका चेहरा थोड़ा पता था कि ये बहन साथ है। तो ऐसे करते करते हम पहुंचे शांतिवन गेट नंबर 2। अंदर आए मुझे ऐसा लगा कि इस स्थान को मैंने देखा है, फर्स्ट फीलिंग जो आई ये स्थान मैं जानता हूँ बस। फिर उसके बाद में तब तक मेरी मंत्र दीक्षा हो गई थी, फिर मैं घूमने लगा। वो पार्टी में से मुझे कोई खबर नहीं, कहाँ जाना खबर नहीं, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ यहाँ से वहां वहां से वहां। रात को सोया तो मुझे एक बहुत जैसे कि दिव्य जैसा ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है हमारा हिस्ट्री हॉल में वो जैसे दिखा बहुत सुंदर तरीके से। फिर सुबह उठा, मंत्र जाप जो मेरा चालू था हनुमान चालीसा राम रक्षा वो सारा भूल गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कहा ये कुछ हिप्नोसिस तो नहीं हो रहा इधर, ऐसे मुझे थोड़ा डाउट लगा। फिर भी कुछ जैसे सब भूलते गया। फिर घूम रहा हूँ भटक रहा हूँ 27 तारीख शाम को गीत बचा, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। मुझे लगा ये गीत मैंने हजारों बार सुना है, ये कौन सा गीत है। मैं और मैंने देखा सब लोग एकदम शांत अवस्था में खड़े हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल था, मुझे क्या पता कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मैं तो देख रहा हूँ ये लोग क्यों ऐसे रुके। और मुझे ऐसा लगा कि ये गीत ये कौन सा गीत है, मैंने इसको एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार सुना है जबकि कभी नहीं सुना था। तो वो मतलब गीत चल रहा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ ना, बाबा का दिन था 30 नवंबर कि भाई 3 बजे से गेट खुल जाएंगे। मुझे क्या पता, मैं गया 3:30 बजे और बैठा वहां पर 3:30 बजे से, तो तब से लेके तो रात को 11 बजे तक बैठा ही रहा। मुझे याद है कि मैंने अपने हमारे पिताजी से कहा था कि अगर मुझे कोई रोक सकेगा तो भगवान खुद ही रोक सकता है। तो मतलब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो। तो मैं बैठा रहा। अब हमारी बहन ने तो खाली इतना बताया था कि हिंदी में चलेगा जो चलेगा मुरली। तो और मैं देख रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ और बाबा आए, क्या मुरली चली मुझे पता नहीं, कौन आया मुझे पता नहीं, वो क्या सभा है वो मुझे पता नहीं। परंतु जो वाक्य मुझे सुनाई आ रहे थे, एक ही वाक्य सुनाई आया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, ये वाक्य मुझे सुनाया बस। बाकी कुछ सुनाई नहीं आया, बाकी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, जस्ट एक ही चीज, कितना देर में बैठा रहा और रोता रहा, कुछ भी सामने भी नहीं दिख रहा था, जस्ट जैसे कोई प्रकाश दिख रहा है बस। इतना लंबा समय तक मुझे याद नहीं मैंने कभी इतना लंबा समय बैठा हुआ, अभी भी नहीं बैठ सकता, मतलब इतना लंबा समय 3:30 बजे से बैठा 11 बजे तक। और इतना पक्का निश्चय था कि बस तो मुझे जाना ही है यहाँ से, ये अगर हो गया मैंने यहाँ तक कि यहाँ से बस निकल जाऊंगा अभी और जहाँ संन्यास लेना है। तो मतलब संन्यास ले रहा था किस लिए, भगवान को पाने के लिए, और भगवान उससे पहले ही मिल गया। फिर दूसरे दिन जो पार्टी थी, मैं तो किसी को जानता नहीं था उसमें, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी ये सारी पार्टी को ले जाना है। नहीं, फिर मुझे घुमाने इधर लेके आए हॉस्पिटल में। मुझे क्या पता अभी कुछ यहाँ साइट सीइंग भी होती है करके, कुछ पता नहीं। हॉस्पिटल के सामने खड़े रहे और कहा कि ये है हॉस्पिटल। वो देखकर मुझे याद आया कि मैं भी डॉक्टर हूँ। वो जब हॉस्पिटल देखा तो मैं सीधा अंदर गया। मैंने कहा इसका इंचार्ज जो भी होगा इनसे मुझे मिलना है। मैं गया डॉक्टर प्रताप के केबिन में। मैं कहा मुझे अभी अभी इसी वक्त ज्वाइन करना है यहाँ पर। बोले तुम कौन हो? कौन से सेंटर से हो? कौन सा सेंटर? मेरा कोई सेंटर ही नहीं है। मेरा जन्म अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि और बोल से हुआ है। मतलब जीवन की जो पहली मुरली हमने सुनी वो सीधा अव्यक्त बाप दादा से सुनी और वही जन्म हुआ और यहाँ है। और इन्होंने कहा फिर सर्वोदय सर ने कहा कोई लेटर वगैरह होगा तो देखो। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। फिर हम नीचे गए और पार्टी वापस गई। फिर हम घर गए, घर में बताया संन्यास कैंसिल, तो गणपति भी बाहर निकल गया पानी से। और फिर इतने खुश हो गए कि इतनी कोशिश की इसको रोकने को, ये रुका ही नहीं। अभी क्या हो गया इसको, वो पूछा भी नहीं। पर उन्होंने, उनका तो अच्छा था, उन्होंने कहा एटलीस्ट डॉक्टर तो। फिर हमने कहा पर हाँ, पर मैं संन्यास तो नहीं परंतु मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा ठीक है, एकदम भगवे वस्त्र थे ये, डॉक्टर के वेश तो भी ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। फिर वहां से 15 दिसंबर लगभग हम यहाँ आ गए, हॉस्पिटल इधर ज्वाइन किया। मुझे याद है कि जब मैं आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ तक कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक भाई मुझे पूछ रहा था, मेरे पास मतलब एक ही बैग थी। वो बोले तुम रहोगे कहाँ? मैंने कहा रहोगा, मुझे क्या पता कहाँ रहना है। एक तुम्हारे पास कपड़े एक बैग है जिसमें एक ही शर्ट है और एक पैंट है बस, वो भी कुर्ता पैजामा बस। जो पहले दिन ही जब बाबा से मिला, दूसरे दिन जो व्हाइट खरीदा, उस दिन जो व्हाइट पहना तो आज तक व्हाइट, वो जो कुछ पहन के आया था वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ आया हॉस्पिटल में, फिर ज्वाइन किया। तो फिर डॉक्टर प्रताप बोले आपके कपड़े सामान, मतलब सामान कुछ है नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर कनक को बुलाया कि डॉक्टर आया, उसको कपड़े दो, कपड़े भी नहीं है उसके पास। तो फिर हम यहाँ लगभग 1.5-2 साल थे। यहाँ पर जो वो जो नशा था, इतना हायर लेवल का नशा था, बात उसका कोई वर्णन नहीं है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। कोई हमको पूछता था कितने साल से ज्ञान में है, तो हम उसको पहली बार कहे 1 महीने से। फिर वो कहा अच्छा 1 महीने में यहाँ पहुंच गए? फिर मुझे डर लगा, मैंने कहा कि नहीं 6 महीने से। फिर किसी ने कहा 6 महीने में यहाँ पहुंच गए? मैंने कहा 1 साल से। तो मुझे डर लगता था यहाँ पर किसी से कुछ नहीं, बात नहीं करना, बस आओ तपस्या करो जाओ। मुझे याद है मैं पहुंच जाता था लगभग 1:30 या 1:45 बजे इधर कुटिया में, पीछे के रास्ते से पैदल। इतना वो नशा था कि कौन मिला। तो वो जो नशा था बहुत ज्यादा था। फिर सबने कहा कि यहाँ से आप पढ़ाई करके फिर आओ। फिर मैं यहाँ से फिर गया, 5 साल बाहर रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया। और फिर 10 अक्टूबर 2010 को इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक यहाँ। ओम शांति।